एक खुशहाल रिश्ते का मुख्य तत्व के रूप में साप्ताहिक बातचीत परिचय, तीन सवालों के साथ साप्ताहिक जोड़ी संवाद का सिद्धांत। मैंने तुम्हें किस बात से चौंका दिया? मैंने तुम्हें किस बात से निराश किया? मैं अपने बारे में क्या बदल सकता सकती हूँ? एक खुशहाल रिश्ते के लिए एक आजमाया हुआ सुझाव है कि सप्ताह में एक बार एक निश्चित संवाद जोड़े के रूप में किया जाए। इस बातचीत में दोनों साथी एक दूसरे के लिए जानबूझकर समय निकालते हैं और तीन विशेष सवाल पूछते हैं। जब एक बोलता और जवाब देता है तो दूसरा ध्यान से सुनता है, बिना बीच में टोके, बिना विरोध किए। इसके बाद बोलने का अधिकार बदलता है। यह नियमित संवाद एक सुरक्षित स्थान बनाता है जिसमें दोनों बीते सप्ताह की सकारात्मक और नकारात्मक बातों को खुलकर साझा कर सकते हैं। सप्ताह में एक बार ही संवाद क्यों? क्योंकि इससे छोटी छोटी बातों को समय रहते उठाया जा सकता है, इससे पहले कि वे बड़े झगड़ों का रूप लें। मनोवैज्ञानिक शोध बताते हैं कि वे जोड़े जो नियमित रूप से खुलकर बात करते हैं, कम नाराजगी और गलतफहमियां विकसित करते हैं, चीजों को मन में दबाने की बजाय संवाद बना रहता है। ऐसे नियमित संबंध संवाद आपसी सराहना को बढ़ाते हैं और भावनात्मक जुड़ाव को गहरा करते हैं। यह एक साप्ताहिक रीसेट या रिश्ते की जांच की तरह है। आप एक दूसरे के मन की स्थिति से अपडेट रहते हैं और हम भावना मजबूत होती है। आगे उन तीन सवालों को विस्तार से देखा जाएगा जो इस साप्ताहिक रिवाज में पूछे जाते हैं। हर सवाल रिश्ते की गुणवत्ता के लिए एक खास उद्देश्य निभाता है। हम हर सवाल का महत्व समझाएंगे, संभावित उत्तरों के उदाहरण देंगे और बताएंगे कि जवाबों के साथ सबसे अच्छा कैसे व्यवहार करें। अंत में व्यावहारिक सुझाव मिलेंगे कि इस साप्ताहिक संवाद को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल किया जा सकता है। सवाल एक, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें किस बात से चौंका दिया? यह पहला सवाल पिछले सप्ताह की सकारात्मक बातों पर ध्यान केंद्रित करता है। इसका मकसद साथी से जानना है कि कौन सा व्यवहार या गुण खास तौर पर अच्छा लगा। संक्षेप में, किस बात से आप दूसरे को अप्रत्याशित खुशी दे सके। यह सवाल सराहना और आभार जाहिर करने के लिए है। अक्सर छोटी छोटी प्यारी कोशिशें या इशारे रोजमर्रा में अनदेखी रह जाती है। जब साथी बताता है कि उसे क्या अच्छा या चौंकाने वाला लगा, तो ऐसे इशारे सामने आते हैं और सराहे जाते हैं।
इस सवाल का महत्व है जानबूझकर सकारात्मकता को उजागर करना। रिश्तों में सिर्फ समस्याओं पर बात करना ही जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे की सराहना भी दिखाना जरूरी है। जोड़ों पर हुए मनोवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि आपसी सराहना और आभार रिश्ते में संतुष्टि को काफी बढ़ाते हैं। जब साथी बताता है कि उसे किस बात से सकारात्मक आश्चर्य हुआ, तो दूसरा खुद को देखा और प्रोत्साहित महसूस करता है कि वह ऐसे प्यारे काम आगे भी करे। साथ ही ये शुरुआत सौहार्दपूर्ण माहौल बनाती है। बातचीत एक मुस्कान और अच्छे भावों के साथ शुरू होती है, जिससे बाद में कठिन बातों पर चर्चा करना भी आसान हो जाता है। जोड़ों पर शोध की एक प्रसिद्ध कहावत है कि खुशहाल जोड़ों में सकारात्मक इंटरैक्शन नकारात्मक से ज्यादा होते हैं। यह पहला सवाल सकारात्मकता को जागरूकता में लाने और खूबसूरत पलों का संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। सवाल एक के उत्तरों के उदाहरण, यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं कि जब साथी से पूछा जाए कि उसे पिछले हफ्ते किस बात से आश्चर्य हुआ, तो वह क्या जवाब दे सकता है। तुमने मुझे चौंका दिया जब तुमने अचानक मेरा पसंदीदा खाना बनाया। मुझे इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि तुमने मुझे बिना किसी खास वजह के फूल लाकर दिए। यह इशारा अप्रत्याशित और बहुत प्यारा था। मैं सकारात्मक रूप से चौंक गई कि तुमने मेरे साथ शाम की सैर के लिए समय निकाला जबकि तुम्हारे पास बहुत काम था। तुमने मुझे सच में चौंका दिया जब तुमने घर की सफाई कर दी जब मैं बाहर था। घर लौटकर सब कुछ साफ सुथरा देखना, यह मेरे लिए शानदार सरप्राइज था। मुझे यह आश्चर्यजनक और अच्छा लगा कि तुमने पिछले हफ्ते मेरे कठिन कार्य दिवस के बाद इतनी ध्यानपूर्वक पूछा और मेरी बात सुनना चाहा। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। ये तो सिर्फ उदाहरण है। हर जोड़ा और हर सप्ताह अलग होता है। जरूरी है कि जवाब देने वाला साथी ईमानदारी से बताए कि उसे क्या अच्छा लगा। इसमें छोटी छोटी रोजमर्रा की बातें भी शामिल हो सकती हैं। अक्सर छोटे छोटे इशारे ही, जैसे सही समय पर गले लगाना या पसंदीदा ड्रिंक लाना, बड़ा असर डालते हैं और उल्लेखनीय होते हैं। सवाल एक के उत्तर के साथ व्यवहार पूछने वाले वाणी इस समय श्रोता के लिए इस सवाल का जवाब सबसे पहले है। सुनना और स्वीकार करना। जो सराहना या तारीफ मिल रही है उसका आनंद ले। यह सुनना कि आपने क्या अच्छा किया आत्मसम्मान को मजबूत करता है। साथ ही जवाब मूल्यवान संकेत देता है कि साथी के लिए क्या महत्वपूर्ण है और किससे उसे खुशी मिलती है। अगर उदाहरण के लिए ये सामने आता है कि तनावपूर्ण दिन के बाद अचानक गले लगाना सकारात्मक लगा, वो भविष्य के लिए प्रेरणा के रूप में लिया जा सकता है। कई जोड़े अनुभव करते हैं कि यह सवाल एक छोटा अहा क्षण लाता है। पता चलता है कि साथी को वास्तव में क्या अच्छा लगा, कभी कभी वह जिसे खुद ने खास नहीं समझा था। जरूरी है सराहना लौटाना। एक साधारण धन्यवाद, यह सुनकर बहुत अच्छा लगा, एक उपयुक्त प्रतिक्रिया है। इससे साथी को भी अपनी तारीफ सुनी जाने का एहसास होता है। कुल मिलाकर यह आदान प्रदान एक गर्म सकारात्मक माहौल बनाता है और दोनों को मजबूत करता है। आप बातचीत की शुरुआत प्लस साइड से करते हैं। सवाल दो, पिछले हफ्ते मैंने तुम्हें किस बात से निराश किया? यह दूसरा सवाल पिछले सप्ताह की नकारात्मक बातों या निराशाओं पर केंद्रित है। इसमें साथी को सम्मानपूर्वक आलोचना करने या चोट पहुंचाने वाली बातों को उठाने का मौका मिलता है। यह सवाल पूछना मुश्किल हो सकता है क्योंकि कोई भी यह सुनना पसंद नहीं करता कि उसने दूसरे को निराश किया है, लेकिन यही खुलापन एक स्वस्थ रिश्ते के लिए बेहद जरूरी है। यह सवाल एक ऐसा ढांचा देता है जिसमें छोटी चोटें, झुंझलाहट या अधूरी उम्मीदें छुपाई नहीं जाती, बल्कि समय रहते उठाई जा सकती है। सवाल का महत्व, मैंने तुम्हें किस बात से निराश किया का महत्व खासतौर पर है दबी असंतुष्टियों को उजागर करना, इससे पहले कि वे बड़े गुस्से में बदल जाएं। कई रिश्तों में गंभीर समस्याएं इसलिए आती हैं क्योंकि नकारात्मक भावनाएं साझा नहीं की जाती और समय के साथ जमा होती जाती है। अगर निराशाएं नियमित रूप से कही जा सकें तो कोई भी साथी झुंझलाहट को मन में दबाने को मजबूर नहीं होता। इसके बजाय मिलकर समझ सकते हैं कि क्या गलत हुआ और गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। जोड़ों की थेरेपी से जुड़े शोध बताते हैं कि संरचनात्मक रूप से विवादों को उठाना रिश्ते की संतुष्टि बढ़ाता है। जोड़े जो असहमति को छुपाते हैं वे अक्सर गहरी नाराजगी विकसित कर लेते हैं जो साथ को जहरीला बना सकती है। खासकर अनकही निराशाएं समय के साथ तिरस्कार में बदल सकती हैं और विशेषज्ञों के अनुसार तिरस्कार रिश्ते का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह दूसरा सवाल एक तरह का सुरक्षा वाल्व है, ये भाप निकाल देता है इससे पहले कि केतली फट जाए। निराशाओं को शब्दों में कहने का साप्ताहिक मौका छोटी झुंझलाहटों को बड़े झगड़ों में बदलने से रोकता है। जरूरी है कि दोनों साथी समझें, हर कोई कभी ना कभी गलती करता है या कुछ नजरअंदाज कर देता है। सवाल का मकसद आरोप लगाना नहीं बल्कि ईमानदारी से साझा करना है कि क्या बात दुखी या आहत कर गई। इससे दूसरा सीख सकता है और मिलकर समाधान निकाल सकते हैं या कम से कम माफी मांग सकते हैं। सवाल दो के उत्तरों के उदाहरण, यह कुछ उदाहरण है कि निराशा वाले सवाल का जवाब कैसा हो सकता है। ये जवाब उस साथी द्वारा मैं रूप में दिए जाते हैं जो निराश हुआ। मैं निराश हुई जब तुमने हमारा शुक्रवार का डिनर प्लान रद्द कर दिया। मुझे उसका इंतजार था और ऐसा लगा जैसे वह तुम्हारे लिए जरूरी नहीं था। मुझे निराशा हुई कि तुमने पिछले हफ्ते मेरे दिन के बारे में मुश्किल से पूछा। मुझे तुमसे ज्यादा रुचि और ध्यान की उम्मीद थी। मैं दुखी और निराश हुई जब तुमने मेरे माता पिता के साथ हमारी मुलाकात भूल गए। वह मुलाकात मेरे लिए महत्वपूर्ण थी और ये जानकर दुख हुआ कि वह तुम्हें याद नहीं रही। मुझे निराशा हुई कि तुमने घर के काम में कम मदद की जितना वादा किया था। इससे मुझे सब कुछ अकेले करने जैसा महसूस हुआ। मुझे उम्मीद थी कि जब मैं बहुत तनाव में थी तो तुम मुझे ज्यादा समर्थन दोगी। मुझे निराशा हुई कि तुमने मेरे इशारे नहीं समझे और मैं अपने तनाव में अकेली रह गई। ये बयान विशिष्ट हैं और किसी खास स्थिति या व्यवहार का जिक्र करते हैं जो निराशाजनक था। यह जरूरी है क्योंकि सामान्य या व्यापक आलोचना तुम हमेशा निराश करते हो, मददगार नहीं होती और ज्यादा आहत करती है। बेहतर है कि विशिष्ट उदाहरण दिए जाएं, जैसे ऊपर, और अपने भावों पर टिके रहें। मैं निराशा हुई जब। सवाल दो के उत्तर के साथ व्यवहार ये सवाल और इसके जवाब शायद साप्ताहिक संवाद का सबसे संवेदनशील हिस्सा है। जो पूछता है और फिर आलोचना सुनता है उसके लिए जरूरी है कि रक्षात्मक न हो। इसमें अभ्यास चाहिए। हमारी पहली प्रतिक्रिया अक्सर खुद को सही ठहराने या समझाने की होती है कि दूसरे का भाव गलत है, लेकिन यहाँ संयम बरतना चाहिए। जब साथी अपनी निराशा बता रहा हो तो सबसे पहले सुनना, बीच में न बोलना, तुरंत विरोध न करना उसकी स्थिति
में खुद को रखने की कोशिश करें। भले ही आपने स्थिति को अलग तरह से देखा हो, यह स्वीकार करें कि आपका साथी आहत या निराश महसूस कर रहा है। दूसरे का भाव एक सच्चाई है जिसे मानना चाहिए। सुनने के बाद आप धीरे धीरे प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण के लिए श्रोता कह सकता है, धन्यवाद जो तुमने मुझे बताया, मुझे दुख है कि तुम्हें ऐसा महसूस हुआ। इससे आप भावनाओं को गंभीरता से लेने का संकेत देते हैं। अगर कोई सफाई जरूरी हो, शायद कोई गलतफहमी थी, तो वह समझ दिखाने के बाद ही दें। जरूरी, हाँ, लेकिन तुम्हें समझना चाहिए, जैसी सफाई तुरंत न दे। पहले साथी को महसूस हो कि उसकी निराशा सुनी और मानी गई। आगे मिलकर आगे की ओर देखें। हम क्या कर सकते हैं कि ऐसा दोबारा न हो? या मुझे पता नहीं था कि इससे तुम्हें इतनी चोट पहुंचेगी। मैं अगली बार क्या बेहतर कर सकती हूँ? ऐसे सवाल परिवर्तन की इच्छा दिखाते हैं। इससे बातचीत गलतियों की निंदा से हटकर एक संरचनात्मक संवाद बन जाती है, जो आपसी समझ को गहरा करती है। अक्सर पता चलता है कि साथी की निराशा उतनी भारी नहीं थी जब खुलकर बात हो गई। उल्टा, निराश साथी को राहत मिलती है और दूसरा अपने प्रिय की जरूरतों के बारे में नया सीखता है। एक और बात जो साथी निराशा जाहिर करता है, उसे शांत तथ्यपरक लहजा रखने की कोशिश करनी चाहिए। साप्ताहिक रिवाज का फायदा है कि आप अब ताजा गुस्से में नहीं बोल रहे। स्थिति शायद कुछ दिन पुरानी है, बल्कि थोड़े फासले से। इससे शब्दों का चयन सावधानी से होता है। जब दोनों जानते हैं कि आलोचना इस ढांचे में प्यार से की जाती है, तो उसे व्यक्तिगत हमले की तरह लेना आसान नहीं होता। मकसद है मिलकर आगे बढ़ना और भविष्य में अनावश्यक दर्द से बचना। सवाल तीन, मैं अपने बारे में तुम्हारे लिए क्या बदल सकती हूँ? तीसरा सवाल आगे की ओर देखता है। यह साथी को इच्छाएं या जरूरतें जाहिर करने के लिए आमंत्रित करता है, जो पूछने वाले के व्यवहार या रवैये में बदलाव से जुड़ी हो। मूल रूप से आप पूछते हैं, मैं तुम्हारे लिए बेहतर साथी बनने के लिए क्या कर सकती हूँ, या क्या कोई ऐसी बात है जो तुम मुझसे अलग चाहती हो। यह सवाल साहस मांगता है, क्योंकि आप आलोचना और सुधार के सुझावों के लिए खुद को खोलते हैं। साथ ही यह रिश्ते में आगे बढ़ने की बड़ी इच्छा दिखाता है। पूछने वाला संकेत देता है, मुझे तुम्हारी जरूरतें और तुम्हारी
नजर में मेरा बदलना जरूरी है, मैं खुद पर काम करने को तैयार हूँ। सवाल का महत्व इस तीसरे सवाल का महत्व है, व्यक्तिगत विकास के लिए खुलापन और रिश्ते में समझौते की भावना। कोई भी रिश्ता लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकता। अगर दोनों जिद्दी होकर बिना बदले रहें और एक दूसरे का ख्याल न रखें, रिश्तों पर शोध से पता चला है कि अनुकूलनशीलता और साथी के लिए खुद को बदलने की इच्छा दीर्घकालिक संतुष्टि के लिए जरूरी है। वे जोड़े जो कभी कभी अपनी सुविधा सीमा से बाहर निकलने और अपने व्यवहार को सुधारने को तैयार रहते हैं, आमतौर पर चुनौतियों को बेहतर संभालते हैं। यह सवाल इसी भावना को बढ़ावा देता है। आप साथी को संरचनात्मक फीडबैक देने के लिए आमंत्रित करते हैं और सकारात्मक बदलाव के लिए तैयार होने का संकेत देते हैं। यहाँ नजरिया जरूरी है। बात यह नहीं कि कोई साथी खुद को पूरी तरह बदल दे, बल्कि छोटे या बड़े बदलाव पहचानना है जो साथ को और सुखद बना सकते हैं। अक्सर ये व्यवहार या आदतें होती हैं, न कि मूल व्यक्तित्व। उदाहरण के लिए, बेहतर सुनना, रोजमर्रा में मदद करना, समय पर आना या ज्यादा स्नेह दिखाना, जैसा कि दूसरे को चाहिए या जरूरी लगे। मैं अपने बारे में क्या बदल सकती हूँ? सवाल में विनम्रता और सम्मान भी है। आप साथी की जरूरतों को गंभीरता से लेते हैं और रिश्ते की गुणवत्ता के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। सवाल तीन के उत्तरों के उदाहरण इस सवाल के संभावित उत्तर इच्छाओं या अनुरोधों के रूप में दिए जाते हैं। यहाँ कुछ उदाहरण हैं कि एक साथी दूसरे से क्या चाह सकता है। मैं चाहूंगी कि जब हम साथ समय बिताएं, तो तुम शाम को अपना मोबाइल ज्यादा बार एक तरफ रखो। तब मुझे लगता है कि तुम मुझे ज्यादा ध्यान से देख रहे हो। मेरे लिए तुम कोशिश कर सकते हो कि हमारी मुलाकातों पर समय पर आओ। जब तुम बार बार देर से आते हो, तो मुझे लगता है कि मेरी इज्जत नहीं हो रही। ज्यादा समय पर आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मुझे मदद मिलेगी अगर तुम मुझे ज्यादा जगह दो। जब मुझे अपने लिए समय चाहिए, बिना इसे व्यक्तिगत लिए, कभी कभी मुझे बस एक घंटे अपने लिए चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे समझो। मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम खुद से हमारे लिए ज्यादा समय प्लान करो, जैसे कोई डेट नाइट या साथ में वीकेंड प्लान करो। मुझे कभी कभी लगता है कि ऐसी पहल हमेशा मुझसे होती है, और मैं चाहूंगा कि तुम भी कभी मुझे चौंकाओ। तुम अपने बारे में यह बदल सकते हो कि तुम मुझे ज्यादा बार
दिखाओ या कहो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मुझे छोटे छोटे प्यार के इशारे जरूरी लगते हैं, और इसमें तुम थोड़े उदार हो सकते हो। इन सभी जवाबों में एक साथी की जरूरतें जाहिर होती हैं, जो दूसरे से किसी खास बदलाव की मांग करती हैं। ध्यान दें, वाक्य सकारात्मक और मैं केंद्रित है। मैं चाहूंगी कि तुम, न कि आरोप लगाने वाले, तुम कभी नहीं करते, बदलो। ये रचनात्मक भाषा जरूरी है, ताकि दूसरा अनुरोध को स्वीकार कर सके बिना खुद को बंद किए। मदद करता है अगर चाहने वाला यह बताए कि यह बदलाव उसके लिए क्यों जरूरी है। जैसे उदाहरणों में, तब मुझे ज्यादा सम्मान महसूस होता है, तब मुझे ज्यादा प्यार महसूस होता है। इससे साथी इच्छा के पीछे का कारण समझता है। सवाल तीन के उत्तर के साथ व्यवहार पूछने वाले के लिए, जिसे ये बदलाव सुनने को मिलते हैं।
फिर से खुले और रक्षात्मक न होकर सुनना जरूरी है। यह सुनना मुश्किल हो सकता है कि साथी की नजर में आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि इससे अहंग को चोट लग सकती है। फिर भी साथी की स्थिति को ईमानदारी से समझने की कोशिश करें। वह यह इच्छा इसलिए साझा कर रहा है क्योंकि रिश्ता उसके लिए जरूरी है और उसे लगता है कि इससे आप दोनों और खुश रह सकते हैं। इस इच्छा को प्यार का सबूत माने, न कि हमला, क्योंकि साथी चुप भी रह सकता था। उसका कहना भरोसे और बदलाव की उम्मीद दिखाता है। जब आप इच्छाएं सुने तो सराहना के साथ प्रतिक्रिया दें। उदाहरण, धन्यवाद जो तुमने मुझे बताया, मुझे पता ही नहीं था कि यह तुम्हारे लिए इतना जरूरी है। अगर आपको अंदर से लगे ओह यह तो मेरे लिए मुश्किल है, तो भी पहले संकेत दें कि आप इच्छा को गंभीरता से ले रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी इस पर काम करने की।
आपको तुरंत कोई ऐसा वादा नहीं करना जिसे आप निभा ना सकें। अगर कोई इच्छा बहुत बड़ी या अस्पष्ट है तो पूछ सकते हैं, क्या तुम कोई उदाहरण दे सकते हो कि तुम्हारा मतलब क्या है, या क्या खास मदद करेगी कि तुम ज्यादा प्यार महसूस करो। इससे आप इच्छा को सही समझने की कोशिश दिखाते हैं। कुछ इच्छाएं तुरंत पूरी नहीं हो सकती और यह साथी को ईमानदारी से बताना चाहिए, लेकिन बिना तुरंत मना किए। जैसे, समय पर आना सच में मेरी कमजोरी है, मैं इस पर काम करूंगी और शायद तुम मुझे याद दिला दो जब हमें निकलना हो। इस तरह आप मिलकर समस्या सुलझाने का तरीका अपनाते हैं। जरूरी है व्यवहार्यता जांचना और ईमानदार रहना। अगर कोई इच्छा आपकी प्रकृति के बिल्कुल खिलाफ है या आपको बहुत असहज लगती है तो वे सम्मानपूर्वक बताएं। अक्सर समझौता मिल जाता है। उदाहरण, साथी सार्वजनिक जगहों पर ज्यादा शारीरिक निकटता चाहता है लेकिन आप इसमें शर्मीले हैं। समझौता यह हो सकता है कि छोटे इशारे बढ़ाएं, लेकिन अपनी सीमा में। इस पर बात की जा सकती है। संक्षेप में, इस तीसरे सवाल के जवाब पर प्रतिक्रिया में दिखना चाहिए कि आप दूसरे के लिए आगे बढ़ने को तैयार हैं। यह रवैया भरोसे को बहुत मजबूत करता है। साथी देखता है मेरी जरूरतें उसके लिए जरूरी है, वह कोशिश करने को तैयार है। और भले ही हर इच्छा पूरी ना हो सके, लेकिन गंभीरता मायने रखती है जिससे दोनों अपने रिश्ते पर काम करते हैं। ऐसे जोड़े समय के साथ असली टीम भावना विकसित करते हैं। वे खुद को एक इकाई मानते हैं जो समस्याओं पर मिलकर काम करती है, न कि एक दूसरे के खिलाफ। व्यवहारिक सुझाव, रोजमर्रा में साप्ताहिक संवाद कैसे सफल बनाएं? सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है इस योजना को सच में हर हफ्ते लागू करना। रोजमर्रा की जिंदगी व्यस्त है, काम, बच्चे, घर, जिम्मेदारियां, ऐसे में जोड़ी संवाद पीछे छूट सकता है, ताकि साप्ताहिक रिवाज सिर्फ एक अच्छा इरादा न रह जाए। यहाँ कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं कि इसे व्यवस्थित रूप से कैसे किया जा सकता है। एक, निश्चित समय तय करें। एक खास दिन और समय तय करें जो दोनों के लिए व्यावहारिक हो, जैसे रविवार रात खाने के बाद या शनिवार सुबह कॉफी के साथ। इस समय को एक जरूरी कैलेंडर एंट्री की तरह दर्ज करें, इसे प्राथमिकता दें। नियमितता से संवाद टलता नहीं है। कई जोड़े ऐसा समय चुनते हैं जब सप्ताह शांत हो या अभी शुरू ना हुआ हो, ताकि दोनों का मन खाली हो। दो, बिना व्यवधान के माहौल बनाएं। ऐसी जगह चुनें जहां आप बिना बाधा हो सके। फोन साइलेंट करें, बच्चों को व्यस्त या सुला दें और आरामदायक माहौल बनाएं। कुछ जोड़े सोफे पर बैठते हैं, कुछ टहलते हुए बात करते हैं। जरूरी है कि दोनों सहज हो और सच में सुन सके। रिवाज की शुरुआत इसी छोटी नेटिक्वेट से करें, जैसे गले लगना या आंखों में देखना, ताकि यह एहसास हो अब हम पूरी तरह एक दूसरे के लिए हैं। तीन सवालों पर ध्यान केंद्रित करें। हर साथी के लिए तीन सवालों की संरचना पर टिके रहें। यह स्पष्ट ढांचा भटकने या रोजमर्रा की बातों में उलझने से बचाता है। बातचीत में और बातें आ सकती हैं, लेकिन मुख्य फोकस आश्चर्य, निराशा और बदलाव की इच्छा पर रखें। अगर अन्य विषय, घर, पैसे, रोजमर्रा की बातें उठानी हो तो उन्हें पहले या बाद में निपटा लें या किसी और समय के लिए टाल दें। इससे संबंध संवाद भावनात्मक रूप से केंद्रित रहता है। चार, सक्रिय सुनना, बिना टोके। यह नियम बनाए कि हमेशा एक ही बोले और दूसरा सुने, जब तक बोलने वाला संकेत ना दे कि वह पूरा बोल चुका है। सक्रिय सुनना मतलब सच में ध्यान देना, सिर हिलाना, आंखों में देखना और साथ साथ जवाब ना सोचना। बोलने वाले को ना टोका जाए, ना जज किया जाए। यह नियम अनुशासन मांगता है, लेकिन फायदा देता है। दोनों को सम्मान और गंभीरता का एहसास होता है। चाहे तो कोई प्रतीकात्मक वस्तु, जैसे कोई खास चीज पकड़ना, जब बोले इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि पता चले कि किसकी बारी है। पांच, भावनात्मक सुरक्षा सुनिश्चित करें। खासकर जब निराशा और बदलाव की इच्छाएं उठें, तो जरूरी है कि झगड़ा ना हो। यह संवाद ऐसे समय के लिए ना रखें जब आप पहले से झगड़ रहे हो। ऐसा समय चुनें जब आप दोनों शांत हों। अगर बातचीत के दौरान माहौल बिगड़ने लगे, जैसे कोई आहत हो, तो अपने साझा लक्ष्य को याद करें। ना जीतना है, ना सही साबित होना है, बल्कि एक दूसरे को समझना है। लहजे और शब्दों में सम्मान रखें। जरूरत हो तो थोड़ी देर का ब्रेक लें, गहरी सांस लें और शांत होने पर फिर शुरू करें। 6. समय सीमा समायोजित करें। साप्ताहिक संवाद घंटों लंबा होना जरूरी नहीं, अक्सर 20 से 30 मिनट ही काफी होते हैं। अगर दोनों मुद्दे पर टिके रहे चाहे तो ज्यादा देर भी बात कर सकते हैं, अगर दोनों चाहें। जरूरी है कि समय का दबाव ना हो, पर्याप्त समय रखें और खुद से नरमी बरतें। अगर कभी संवाद छोटा या सतही हो जाए तो चिंता न करें, अगली हफ्ते फिर मौका है। नियमितता लंबाई से ज्यादा जरूरी है। हर हफ्ते एक छोटा लेकिन ध्यानपूर्ण संवाद तिमाही में एक लंबा संवाद से ज्यादा असरदार है। 7. सकारात्मक नोट पर समाप्त करें। अपने साप्ताहिक संवाद का अंत संभव हो तो किसी सकारात्मक बात से करें। यह एक साधारण धन्यवाद हो सकता है, धन्यवाद जो तुमने सुना और इतने ईमानदार रहे, एक गले लगना या चुंबन, या आप इसे किसी छोटी सी दोपहरिया के साथ जोड़ सकते हैं। कुछ जोड़े इसके बाद डेट नाइट करते हैं, जैसे साथ में फिल्म देखना, टहलना या कुछ स्वादिष्ट खाना। इससे संवाद रिवाज किसी सुखद चीज से जुड़ जाता है और दोनों को इसका इंतजार रहता है।
यह भी मजबूत करता है कि आलोचना के बावजूद अंत में साथ है और प्यार करते हैं। 8. बने रहें और लचीले रहें। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लग सकता है, शायद कोई साथी शुरू में झिझके। अगर शुरुआत में दिक्कत हो तो हार ना माने, अभ्यास से सब आसान होता है। कुछ हफ्तों में आप अपनी लय पालेंगे। और लचीले रहें, अगर किसी हफ्ते समय बहुत कम हो तो संवाद को उसी हफ्ते किसी और समय पर शिफ्ट करें, बजाय छोड़ने के। अगर कभी सच में कोई रुकावट आ जाए तो संवाद फोन पर भी कर सकते हैं, अगर कोई यात्रा पर हो। मुख्य बात है कि नियमितता बनी रहे। यह संकेत देता है हमारा रिश्ता हमारे लिए इतना जरूरी है कि हम इसे किस्मत पर नहीं छोड़ते। निष्कर्ष 3 सवालों: मैंने तुम्हें किस बात से चौंका दिया, मैंने तुम्हें किस बात से निराश किया, और मैं अपने बारे में क्या बदल सकती हूँ, के साथ साप्ताहिक संबंध संवाद एक प्रभावी तरीका है जिससे रिश्ता जीवंत और खुशहाल बना रहता है। ये खुलापन, भरोसा और नजदीकी को बढ़ाता है, क्योंकि दोनों साथी नियमित रूप से सकारात्मक भाव, आलोचना और इच्छाएं साझा करते हैं। छोटी समस्याएं तुरंत सुलझ जाती हैं, इससे पहले कि वे बड़ी बनी, और अच्छे अनुभव साझा होते हैं, बजाय इसके कि उन्हें सामान्य मानकर छोड़ दिया जाए। वैज्ञानिक शोध ऐसे संवादों की प्रभावशीलता की पुष्टि करते हैं। वे जोड़े जो लगातार संवाद करते हैं, एक दूसरे की सराहना करते हैं और खुद पर काम करते हैं, वे ज्यादा संतुष्ट और ज्यादा जुड़े हुए महसूस करते हैं। बेशक ऐसा रिवाज प्यार या स्नेह की जगह नहीं ले सकता, लेकिन यह उसे पोषित करता है। जब आप हर हफ्ते समय निकालकर रिश्ते पर ध्यान देते हैं तो आप दिखाते हैं, तुम मेरे लिए जरूरी हो, हमारा साथ मेरे लिए जरूरी है। यह सुरक्षा और सराहना का भाव एक खुशहाल